From the conference center at Temple Square in Salt Lake City,
सॉल्ट लेक सिटी में टेंपल स्क्वायर सम्मेलन केंद्र से ये अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह के गिरजे का 184th अर्धवार्षिक महासम्मेलन है। इसमें गिरजे के जनरल अधिकारियों और जनरल पदाधिकारियों से चुने गए वक्ता संबोधन करेंगे और इस सत्र का संगीत मॉर्मन मंडप गायक मंडली द्वारा होगा।
This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution.
इसका प्रसारण Bonneville Distribution द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप में किया जा रहा है। बिना लिखित अनुमति के इस कार्यक्रम की नकल, रिकॉर्डिंग, प्रतिलेखन या अन्य उपयोग वर्जित है। अध्यक्ष डीटर एफ उकडोर्फ गिरजे की प्रथम अध्यक्षता में द्वितीय सलाहकार इस सत्र का संचालन करेंगे। भाइयों और बहनों, अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे के 184th अर्धवार्षिक महासम्मेलन के चौथे सत्र में हम आपका स्वागत करते हैं। अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन, जो कि इस महासम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं, ने कहा है कि मैं इस सत्र का संचालन करूं। हम विश्व भर में गिरजे के सदस्यों और मित्रों को शुभकामनाएं देते हैं और स्वागत करते हैं जो इन कार्रवाइयों में रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट या उपग्रह प्रसारण द्वारा भाग ले रहे हैं। हम जनरल अधिकारियों और जनरल सहकारी अध्यक्षता का जो उपस्थित हैं और कृतज्ञता से अभिनंदन करते हैं। इस सत्र का संगीत मॉर्मन मंडप गायक मंडली द्वारा मैक विल्बर के निर्देशन में होगा। एंड्रयू अंसवर्थ और क्ले क्रिस्टेंसन ऑर्गन बजाएंगे। गायक मंडली इस अधिवेशन का आरंभ सिंग प्रेज टू हिम और अब हमारे पक्ष के साथ प्रेज द लॉर्ड विद हार्ट एंड वॉइस गाकर करेगी। एल्डर डॉन आर क्लार्क 70 के आरंभिक प्रार्थना करेंगे, जिसके पश्चात गायक मंडली गाएगी प्रेज टू द मैन।
Our dear, kind Heavenly Father,
हमारे परमपिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं इस सबत दिन में। धन्यवाद करते हैं जितने भी हमें बरकत, हमें आशीष मिली है। हम इस कॉन्फ्रेंस के लिए धन्यवाद करते हैं आपसे और जितनी भी आशीष हमें मिली है। हम यीशु मसीह के पापों के लिए, बलिदान के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आनंद परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं। पुनरुत्थान के लिए धन्यवाद करते हैं। भविष्यवक्ता थॉमस मॉन्सन के लिए धन्यवाद करते हैं, हम जोसेफ स्मिथ के लिए धन्यवाद करते हैं और जो भी उन्होंने हमारे लिए किया है अनंत के लिए। आज के दिन हम आपसे विनती करते हैं, आज हमें आशीष दीजिए ताकि हम वो कर सकें जो हमें जानना चाहिए। हम चाहते हैं कि आप गरीबों को आशीषित कीजिए, जितने भी अनाथ लोग हैं उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दीजिए। हम भविष्यवक्ता और उनके परिवार के लिए आशीष देना चाहते हैं और 12 प्रेरितों के लिए भी और जितने भी मिशनरीज इस दुनिया में हैं उनके साथ भी रहिए और हमें एज मेंबर्स हमें मदद कीजिए ताकि हम उनके साथ आगे बढ़ सकें। और हम ये सब मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
We will now be pleased to hear from President Henry B. Eyring.
और अब हमें अध्यक्ष हेनरी बी आयरिंग प्रथम अध्यक्षता में प्रथम सलाहकार को सुनने का सौभाग्य होगा. उनके बाद एल्डर रसल एम नेल्सन बोलेंगे 12 प्रेरित के परिषद से. बहन कैरल एफ मैकॉन्की युवती संस्था की जनरल अध्यक्षता में पहली सलाहकार हमें हमसे बोलेंगी.
My hope for us today.
हमारे लिए आज मेरी आशा यह है कि हम सब परमेश्वर के प्यार और प्रकाश को महसूस कर सके. बहुत से लोग जो आज सुन रहे हैं हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता से व्यक्तिगत प्रकटीकरण की आशीष प्राप्त करने की अत्यधिक जरूरत महसूस करते हैं. मिशन अध्यक्षों के लिए संघर्ष कर रहे प्रचारक को उत्साहित करने के लिए ये एक गिड़गिड़ाहट भरी प्रार्थना हो सकती है. इस संसार में पिता या माँ के लिए युद्ध से एक उजड़े हुए शहर में यह जानना एक अत्यंत जरूरी होगा कि उनका परिवार सुरक्षा के दूसरे स्थान पर चले जाए या वहीं ठहरे रहे जहाँ वे हैं. आज सैकड़ों स्टेक अध्यक्ष और धर्माध्यक्ष यह जानने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई खोई हुई भेड़ को बचाने के लिए प्रभु की मदद कैसे करे. और एक भविष्यवक्ता की प्रार्थना यह पता करना होगी कि प्रभु उससे गिरजे और इस अशांत विश्व से क्या बुलवाना चाहता है. हम सब जानते हैं कि मानव समझ और तार्किक सोच उन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए काफी नहीं जो जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है. हमें परमेश्वर और प्रकटीकरण की जरूरत है और हमें तनाव के समय सिर्फ एक प्रकटीकरण से काम नहीं चलेगा बल्कि हमें नए प्रकटीकरणों का निरंतर प्रवाह चाहिए. हमें सिर्फ कुछ क्षणों का ज्ञान और दिलासा नहीं चाहिए बल्कि हमें परमेश्वर से निरंतर बातचीत की आशीष चाहिए. इस गिरजे का अस्तित्व एक बालक द्वारा सच्चाई जानने से पैदा हुआ था. बालक जोसेफ स्मिथ जानता था कि वह स्वयं नहीं जान सका था कि उसे किस गिरजे में शामिल होना चाहिए. इसलिए उसने परमेश्वर से पूछा जैसे याकूब की पुस्तक ने उसे बताया था. पिता परमेश्वर और उसका प्रिय पुत्र उपवन में दिखाई दिए. उन्होंने उस प्रश्न का उत्तर दिया जिसे हल कर पाना जोसेफ की शक्ति के परे था. तब उसे न केवल परमेश्वर द्वारा यीशु मसीह के सच्चे गिरजे को स्थापित करने के लिए नियुक्त किया गया बल्कि इसके साथ पवित्र आत्मा का आह्वान करने की शक्ति को पुनः स्थापित किया ताकि परमेश्वर से निरंतर प्रकटीकरण मिलता रहे. अध्यक्ष बॉयड के पैकर ने व्याख्या की थी कि सच्चे गिरजे की पहचान चिन्ह इस प्रकार है. प्रकटीकरण गिरजे में जारी रहता है. भविष्यवक्ता इसे गिरजे के लिए अध्यक्ष उसके स्टेक उसके मिशन या उसकी परिषद के लिए धर्माध्यक्ष उसके वार्ड के लिए पिता अपने परिवार के लिए व्यक्ति स्वयं अपने लिए प्राप्त करता रहता है. प्रकटीकरण की यह शानदार प्रक्रिया आरंभ समाप्त और जारी रहती है जब हम व्यक्तिगत प्रकटीकरण प्राप्त करते हैं. आओ हम लेही के पुत्र महान नीफा एक उदाहरण है. उसके पिता ने सपना देखा. नेफी के परिवार में दूसरों ने लेही के सपने को मानसिक उलझन की घटना के रूप में देखा था. उसके सपने में परमेश्वर ने लेही के पुत्रों के लिए यरूशलेम वापस लौटकर उन पट्टियों को लाने का बहुत जोखिम भरा आदेश दिया था जिसमें परमेश्वर के वचन थे जो उन्हें प्रतिज्ञा के प्रदेश में अपनी यात्रा पर ले जाने थे. हम अक्सर नफी के साहसिक घोषणा का उदाहरण देते हैं जब उसके पिता ने उन्हें यरूशलेम वापस जाने के लिए कहा था. अब उन शब्दों को जानते हैं, मैं जाऊंगा और वह काम करूंगा जिसकी आज्ञा प्रभु ने मुझे दी है. जब लेही ने नफी उन शब्दों को बोलते सुना धर्मशास्त्र बताते हैं वह अत्यंत ही प्रसन्न हुआ. वह प्रसन्न था क्योंकि वह जानता था कि नीफाई को प्रकटीकरण की पुष्टि करने की आशीष दी गई थी कि उसके पिता का सपना परमेश्वर की ओर से एक सच्ची आश गया है. नीफाई ने यह नहीं कहा मैं जाऊंगा और उसे करूंगा जो मेरे पिता ने मुझे करने के लिए कहा था. असल में उसने कहा मैं जाऊंगा और उसे करूंगा जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने दी थी. अपने परिवारों में अपने अनुभव से आप ये भी जानते हैं लिया है क्यों अत्यंत प्रसन्न हुआ था। उसका आनंद यह जानने से आया था कि नफी को पुष्टि करने वाला प्रकटीकरण मिला था। बहुत से माता पिता पारिवारिक नियम बनाए हैं कि जब किशोर बच्चे रात में घर वापस लौटना चाहिए, लेकिन उस आनंद के विषय में विचार करें जब माता पिता को पता चले, जैसे एक ने कुछ साहस प्रूव किया था कि एक बच्ची को जो हाल ही में घर से दूर चली गई थी, उसने न केवल अपने समय को सीमित किया बल्कि सप्त के दिन का वैसा ही पालन किया जैसा उसे घर में सिखाया गया था। माता पिता के प्रकटीकरण का स्थायी प्रभाव निजी प्रकटीकरण में पड़ता है जो कि बच्चे में जारी रहता है। मेरी माँ ने अवश्य प्रकटीकरण के उस नियम को समझा था। नौजवान के रूप में मैं पिछला दरवाजा बहुत देर से बंद करता जब मैं शाम को घर देर से आता था। अपने घर अपने कमरे में जाने के लिए मुझे अपनी माँ के कमरे से होकर गुजरना होता था। मैं कितना भी धीरे धीरे जाता था, जो ही मैं उसके आधे खुले दरवाजे के निकट पहुंचता, मैं बहुत धीमे से अपना सुनता था, हॉल एक क्षण के लिए भीतर आओ। मैं भीतर जाता और उसके बिस्तर के कोने में बैठता। कमरे में अंधेरा होता था। यदि आपने सुना होता तो आप सोचते जीवन के विषय में यह केवल एक मित्रता भरी बातचीत थी, लेकिन आज तक मैं अच्छी तरह याद कर सकता हूँ उन्होंने जो बोला था। मैं उसी शक्ति को महसूस करता हूँ जब मैं अपने कुलपति की आशीष पढ़ता हूँ। मैं नहीं जानता यह प्रार्थनाओं में क्या मांगती थी जब वह उन रातों में मेरी प्रतीक्षा करती थी। मुझे लगता है यह कुछ हद तक मेरी सुरक्षा के लिए रही होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि उन्होंने इस तरह प्रार्थना की थी जैसा एक कुलपति आशीष देने से पहले करता है। वह प्रार्थना करता है कि उसके शब्द प्राप्त करने वाले को परमेश्वर के शब्दों के रूप में आने चाहिए, उसके लिए। मेरी माँ की प्रार्थनाएं मेरे मामले में उसी तरह की आशीष के लिए थी। वह आत्मिक संसार में है और उसे 40 वर्षों से अधिक हो गया। मुझे यकीन है यह अत्यंत प्रसन्न है कि मैं वैसा ही आशीषित हुआ हूँ जैसा वह चाहती थी। उसकी सलाह में परमेश्वर के आदेशों को सुनना और मैं वैसा ही चलने और करने का प्रयास किया है जैसा उन्होंने मेरे लिए आशीष की थी। मैं निरंतर प्रकटीकरण के इसी चमत्कार को गिरजे में अध्यक्ष और धर्माध्यक्षों में देखा है, और जैसा एक यह परिवार के मार्गदर्शन के प्रकटीकरण में सच है। प्रकटीकरण केवल सभी महत्वपूर्ण होता है यदि वह लोग जिनका मार्गदर्शन किया जाता है इसके बारे में पुष्टि करने वाला प्रकटीकरण प्राप्त करें। हजारों लोगों को घर खाली छोड़ने पड़े थे क्योंकि उनके घर नष्ट हो गए थे। हजारों लोगों को घर खाली छोड़ने पड़े थे क्योंकि उनके घरों घनस्थ हो गए थे। सहायता के काम का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी स्थानीय स्टेक अध्यक्ष की थी। उस आपदा के कुछ दिनों बाद मैं रिक्स कॉलेज की कक्षा में था। सरकारी आपदा संस्था का मार्गदर्शक वहां आया था। वह और उसके मुख्य सहायक एक बड़े कमरे में गए जहां स्टेक अध्यक्ष ने धर्माध्यक्ष और अन्य स्थानीय धर्मों के कुछ पादरियों को एकत्रित किया था। मैं वहां पर था क्योंकि बहुत से आपदा पीड़ित लोगों की वहां देखरेख की जा रही थी और उन्हें कॉलेज के कैंपस ठहराया गया था जहां मैं अध्यक्ष था। जब मीटिंग आरंभ हुई, सरकारी आपदा संस्था का प्रतिनिधि खड़ा हुआ और अधिकृत रूप से उसने उनके विषय में बताने लगा जो बचाव कार्य के रूप में किए जाने थे। उसके 5-6 जरूरी बचाव कार्यों की सूची बताने के बाद स्टेक अध्यक्ष शांति से जवाब दिया, हमें सब पहले से ही कर चुके हैं। कुछ मिनट बाद सरकारी आपदा संस्था का व्यक्ति बोला, मैं सोचता हूँ कि चुपचाप बैठ जाता हूँ और कुछ देर के लिए निगरानी करता हूँ। तब है और उसके सहायक धर्माध्यक्ष और एल्डर परिषद के अध्यक्षों द्वारा दिए किए बचाव कार्यों के बारे में सुनते रहे। उन्होंने उन्हें मेरे निर्देश और उनके मार्गदर्शकों ने जो किया था उसकी चर्चा की। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें परिवार को खोजते और उनकी मदद करते समय क्या प्रेरणा मिली थी। तब तक बहुत रात हो चुकी थी। वह सब इतने थक चुके थे कि लोगों के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करने के सिवा वे कुछ नहीं कर सकते थे। स्टेक अध्यक्ष ने धर्मदर्शियों को कुछ अंतिम निर्देश दिए और फिर उन्हें अगली मीटिंग का समय बताया जो कि अगली सुबह जल्दी होनी थी। अगली सुबह सरकारी टीम का मार्गदर्शन मीटिंग आरंभ होने से 20 मिनट पहले पहुंच गया था। मैंने उसे स्टेक अध्यक्ष से चुपचाप यह कहते सुना, अध्यक्ष आप मुझसे और मेरी टीम के सदस्यों से कौन सा कार्य करवाना चाहते हैं? जो उस व्यक्ति ने देखा, मैंने उसे विपदा और परीक्षा के समयों में पूरे विश्व में देखा है। अध्यक्ष पैकर सही बोला था, स्टेक अध्यक्षों को उनकी ज्ञान क्षमता से अधिक ऊपर उठाने निरंतर प्रतिकरण मिलते रहते हैं और इसके अतिरिक्त जिनका निर्देशन अध्यक्ष करते हैं प्रभु उन्हें पुष्टि करने की गवाही देता है कि ये आज्ञा परमेश्वर द्वारा पवित्र आत्मा।
As a very young man, I was called to be a counselor to an elders quorum president. I have in turn been counselor to two district presidents, to a presiding bishop of the church, as a member of the quorum of the 12 apostles, and as a counselor to two presidents of the church. I have seen revelation given to them and then confirmed to their followers. That personal revelation of acceptance for which we all long does not come easily. Nor does it come simply for the asking. The Lord gave this standard for the capacity to receive such witnesses from God. It is a guide for anyone seeking personal revelation, as we all must. Open quote. Let thy bowels also be full of charity towards all men and to the household of faith.
उदारता से भरी रहे और नैतिकता तुम्हारे विचारों और निरंतर अलंकृत करे, फिर तुम्हारा भरोसा परमेश्वर के सम्मुख मजबूत होगा और पुरोहितों का सिद्धांत आकाश और से ओस की बूंद के समान तुम्हारी आत्मा पर गिरेगा। इन सब मुझे एक संदेश मिलता है जो हम सब पर लागू होता है। परमेश्वर के भविष्यवक्ता के प्रति प्रेम के उस एहसास को कम न समझे जो आपको मिलता है। गिरजे में जहाँ कहीं मैं जाता हूँ उस समय भविष्यवक्ता कोई भी हो, सदस्य कहते हैं जब आप गिरजे के मुख्यालय वापस लौटें, क्या आप भविष्यवक्ता बताएंगे कि हम उससे बहुत प्रेम करते हैं? यह अपने पसंदीदा हीरो की सराहना करने या उन अनुभूतियों से बहुत अधिक है जो हम कभी कभी वीरता की छवि वाले लोगों के लिए रखते हैं। इसके साथ आपको प्रतिकरण की पुष्टि का उपहार बहुत सरलता से मिलेगा जब वह प्रभु के भविष्यवक्ता की अपनी भूमिका में बोलता है। प्रेम जो आप महसूस करते हैं वह उसके प्रवक्ता के लिए प्रभु का प्रेम करते हैं। इसे निरंतर महसूस करना आसान नहीं, क्योंकि अक्सर प्रभु अपने भविष्यवक्ता से ऐसी सलाह देने को कहता है जो लोगों के लिए स्वीकार करने में कठिन होती है। हमारी आत्मा का शत्रु हमें अपमानित होने का एहसास कराने और परमेश्वर से भविष्यवक्ता की नियुक्ति पर संदेश करने का प्रयास करेगा। मैंने देखा है कैसे पवित्र आत्मा कोमल हृदय को प्रेरित कर यीशु मसीह के एक विनम्र शिष्य का प्रकटीकरण की पुष्टि से बचाव कर सकती है। भविष्यवक्ता ने मुझे एक छोटे शहर में एक पुरुष को मोहरबंदी की पवित्र शक्ति को देने के लिए भेजा था। केवल परमेश्वर के भविष्यवक्ता के पास यह निर्धारित करने का अधिकार है कि जिस किसे यह पवित्र शक्ति मिलनी चाहिए जो प्रभु ने वरिष्ठ प्रेरित पत्रस को दी थी। मुझे वही मोहरबंदी की शक्ति मिली थी, लेकिन केवल गिरजा के अध्यक्ष के निर्देश द्वारा मैं किसी अन्य को दे सकता था। तो सॉल्ट लेक सिटी से दूर एक कमरे में मैंने अपने हाथों को उस पुरुष के सिर पर रखा जिस भविष्यवक्ता ने मोहरबंदी की शक्ति पाने के लिए चुना था। उसके हाथों से अल्प जीविका के लिए जिंदगी भर खेत में हल चलाने के चिन्ह दिखाई देते थे। उसकी छोटी सी पत्नी जो उसके निकट बैठी थी उसमें भी अपने पति के साथ साथ सालों की कठिन मेहनत के चिन्ह दिखाई देते थे। मैंने भविष्यवक्ता द्वारा दिए शब्दों को बोला। भविष्यवक्ता का नाम, जिसके पास पृथ्वी वर्तमान समय में पुरोहिति की सभी कुंजियां और फिर दिए गए अधिकार और जिम्मेदारी के अंतर्गत मैं तुम्हें मोहरबंदी की शक्ति प्रदान करता हूं, और मैंने उसका नाम दिया और फिर मंदिर का नाम जहां वह मोहरबंदी करने की सेवा करेगा। उसके गालों से आंसू बहने लगे। मैंने देखा कि उसकी पत्नी भी रो रही थी। मैं उनका भावनात्मक रूप से शांत होने की प्रतिज्ञा की। मैं खड़ी होकर और मेरी ओर बढ़ी। उसने ऊपर देखा, फिर संकोच के साथ कहा कि वह बहुत खुश है। लेकिन दुख भी। उसने कहा कि उसे अपने पति के साथ मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब वह महसूस करती है कि उसे उसके साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने इतने भव्य और पवित्र भरोसे के लिए उसे चुना है। फिर उसने कहा कि उसकी मंदिर साथिनी बनने के लिए अपर्याप्त होने की उसकी अनुभूति इसलिए आई क्योंकि वह ना तो पढ़ सकती थी और ना ही लिख सकती थी। मैंने उसे आश्वासन दिया कि उसका पति उसकी महान आत्मिक शक्ति के कारण मंदिर में उसकी संगति में सम्मानित होगा। उसकी भाषा की सीमित समझ होते मैंने उससे कहा कि परमेश्वर ने ये बातें उसे सभी सांसारिक शिक्षा के परे प्रकट की हैं। आत्मा के उपहार द्वारा वह जानती थी कि परमेश्वर ने उसके भविष्यवक्ता द्वारा स्वर्गीय भरोसा पति को दिया था जिससे वह प्रेम करती थी। वह समय जानती थी कि मोहर बंद की शक्ति की कुंजियां एक व्यक्ति के पास थी जिसको उसने देखा नहीं था, और वह निजी रूप से जानती थी वह परमेश्वर का जीवित भविष्यवक्ता था। वह जानती थी बिना किसी जीवित गवाह द्वारा बोले कि भविष्यवक्ता ने उसके पति के नाम के लिए प्रार्थना की थी। वह निजी रूप से जानती थी कि परमेश्वर ने यह नियुक्ति की थी। वह यह भी जानती थी कि जो विधियां उसके पति करेगा लोगों को अनंत काल के लिए सेलेस्टियल राज्य में बांधेंगी। उसके मन में और हृदय में इसकी पुष्टि की गई थी जो प्रतिज्ञा प्रभु ने पतरस से किया था। गिरजे में अभी भी जारी है, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा। हम अपने आरंभिक बिंदु पर लौटते हैं। प्रकटीकरण गिरजे में जारी रहते हैं। भविष्यवक्ता इसे गिरजे के लिए अध्यक्ष, उसके स्टेक, उसके मिशन या उसके परिषद के लिए, धर्माध्यक्ष उसके वार्ड के लिए, पिता उसके परिवार के लिए, व्यक्ति स्वयं अपने लिए प्राप्त करता रहता है। मैं आपको अपनी गवाही देता हूँ, यह सच है। स्वर्गीय पिता आपकी प्रार्थना सुनता है, वह आपसे प्रेम करता है और वह आपको नाम से जानता है। यीशु ही मसीह है, परमेश्वर का पुत्र और हमारा मुक्तिदाता। वह आपकी समझने की योग्यता से अधिक आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर अपने बच्चों को पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकटीकरण देता है। वह पृथ्वी पर अपने वर्तमान भविष्यवक्ता थॉमस एस मॉन्सन से बातें करता है। मैं गवाही देता हूँ कि पृथ्वी पर पुरोहित की सभी कुंजियां उनके पास और यह उनका प्रयोग करते हैं। जब आप इस सम्मेलन में उनके शब्दों को सुनते हैं जिन्हें परमेश्वर ने उसके स्थान पर बोलने के लिए नियुक्त किया है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उस प्रकटीकरण की पुष्टि को प्राप्त करेंगे जिसकी आपको मोहरबंद परिवार में उसके साथ रहने के लिए घर वापस जाने की यात्रा में आवश्यकता होगी। यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन।
अध्यक्ष आरिंग, हम आपका प्रेरणा भरा संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम आपका आपके विश्वास और श्रद्धा के लिए धन्यवाद करते हैं। कल हम में से प्रत्येक को थॉमस एस मॉन्सन को प्रभु के भविष्यवक्ता के रूप में और प्रभु के गिरजे के अध्यक्ष के रूप में समर्थन करने का आमंत्रित किया गया था, और अक्सर हम गाते हैं वी थैंक दी ओ गॉड फॉर प्रॉफिट। क्या हम या आप इसका सच में मतलब जानते हैं? कल्पना करें कि प्रभु ने हमें उसके भविष्यवक्ता का समर्थन करने का मौका दिया है जिसकी सलाह बेदाग बेरंग कोई भी व्यक्तिगत आकांक्षा द्वारा करेंगे और पूर्णतः सच है। हमें वास्तविकता में एक ऐसे भविष्यवक्ता का समर्थन करते हैं। गिरजाघर के अध्यक्ष बनने से बहुत पहले अध्यक्ष जोसेफ एफ स्मिथ ने बतलाया था, यह संतों पर एक महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है जो गिरजे के अधिकारियों का समर्थन करते हैं। हाथ उठाकर ऐसा करने से सिर्फ नहीं मात्र दर्शा नहीं परंतु कार्य में और सच्चाई में है। अच्छा, क्या मुझे मेरा इतना बढ़िया काम याद है, एक भविष्यवक्ता का समर्थन करना? एक मेडिकल डॉक्टर और हृदय रोगी सर्जन के रूप में 1972 में मुझे अध्यक्ष स्पेंसर डब्ल्यू किम्बल की ओपन हार्ट सर्जरी करने की जिम्मेदारी थी। जब वह 12 पीड़ितों के परिषद के सक्रिय अध्यक्ष थे, उन्हें एक जटिल ऑपरेशन की आवश्यकता थी। परंतु मुझे 77 साल के बुजुर्ग हृदय रोग के मरीज पर प्रक्रिया करने का कोई अनुभव नहीं था। मैंने ऑपरेशन ना करने की सलाह और जानकारी अध्यक्ष किम्बल और प्रथम अध्यक्षता को दी थी, परंतु विश्वास में अध्यक्ष किम्बल ने ऑपरेशन करना चुना सिर्फ क्योंकि प्रथम अध्यक्षता द्वारा सलाह दी गई थी। यह दर्शाता है कैसे वह मार्गदर्शकों का समर्थन करते थे और इस निर्णय ने मुझे हिलाकर रख दिया था। प्रभु का धन्यवाद हो, ऑपरेशन सफल हुआ था। अध्यक्ष किम्बल का दिल दोबारा धड़कने लगा। यह अद्भुत समर्थ से हुआ था। उसी क्षण में मुझे आत्मा की स्पष्ट गवाही हुई थी कि एक दिन यह मनुष्य गिरजा का अध्यक्ष बनेगा। आप जानते परिणाम है, सिर्फ 20 महीने पश्चात अध्यक्ष किम्बल गिरजा के अध्यक्ष बने और उन्होंने कई सालों तक निडर और साहसी मार्गदर्शन प्राप्त कराया था। तभी से हम अध्यक्ष एर्जा टेफ बैंसन, हावर्ड डब्ल्यू हंटर, गोल्डन बी हिंकली और अब थॉमस एस मॉनसन को गिरजे के अध्यक्ष के रूप में समर्थन किया है। भविष्यवक्ताओं के सारे शब्द की पहचान होती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि पुनर्स्थापना ने कुछ किया था, उसने पुराने मिथ्य को चकनाचूर कर दिया कि परमेश्वर ने अपने बच्चों से बात करना बंद कर दिया गया है, चाहे से आगे कुछ नहीं हो सकता है। हे भविष्यवक्ता, सभी युग में परमेश्वर के गिरजे का मुखिया बन खड़ा होता है, आदम से लेकर अब तक के दिनों तक। जब हम भविष्यवक्ताओं और दूसरे मार्गदर्शकों का समर्थन करते हैं, हम सामान्य नियम की सहमति की विनती करते हैं के लिए प्रभु कहते हैं। यह किसी को भी आगे मेरे सुसमाचार का प्रचार करने या मेरे गिरजे को बनाना को नहीं दिया गया है, सिवाय उसके किसी ऐसे के द्वारा नियुक्त किया जाएगा जिसके पास अधिकार हो और यह गिरजा का जाना हुआ हो कि उसके पास अधिकार हो और वह लगातार गिरजा के मुख्य द्वारा नियुक्त किया गया है। यह हमें प्रभु के गिरजा का सदस्य होने का भरोसा और विश्वास देता है। जैसे हम धार्मिकता का आदेश को प्रभु की वाणी में सुनते हैं, यह हमें प्रभु के गिरजे का सदस्य होने का भरोसा और विश्वास देता है। जैसे हम धार्मिकता का आदेश को प्रभु की वाणी में सुनते हैं, जैसे यह है उसके सेवक भविष्यवक्ताओं की वाणी के द्वारा आता है। प्रभु के गिरजा के सभी मार्गदर्शकों की बुलाहट उचित अधिकारी द्वारा बुलाई जाती है। कोई भी भविष्यवक्ता या अन्य दूसरा इस गिरजा का मार्गदर्शक किसी भी कारण से अपने आप को कभी बुलाता नहीं है। कोई भी भविष्यवक्ता कभी भी चुनाव से नहीं चुना आता है। प्रभु ने इसे स्पष्ट कर दिया था जब उसने कहा था, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुन लिया और नियुक्त किया है। तुम और मैंने गिरजा का मार्गदर्शकों के लिए किसी भी स्तर पर वोट नहीं किया है। हम उनके समर्थन करने के मौके के द्वारा करते हैं। प्रभु के तरीके मनुष्य के तरीकों से भिन्न हैं। मनुष्यों का तरीका लोगों को दफ्तर या बिजनेस से हट देता है जब वे बूढ़े या अपाहिज हो जाते हैं, परंतु प्रभु का तरीका कभी भी मनुष्य का तरीका नहीं होगा। हमारे भविष्यवक्ताओं का समर्थन करना वह व्यक्तिगत वाचा है कि हम अपना भविष्यवक्ता की उनकी प्राथमिकताओं को चरम से पकड़े रखेंगे। हमारा समर्थन एक शपथ है जो दर्शाती है कि हम उनकी भविष्यवक्ताओं के रूप में बुलाहट की वैधता और पहचानने और बांधेंगे। छब्बीस साल पहले वह गिरजे के अध्यक्ष बन गए थे। तब एल्डर जॉर्ज एल्बर्ट स्मिथ ने कहा था, दायित्व जिसे हम बनाते हैं जब हम अपना हाथ ऊपर उठाते हैं बहुत पवित्र होता है। इसका मतलब नहीं कि हम चुपचाप से अपने रास्ते चले जाएंगे और कामना करेंगे कि प्रभु का भविष्यता इस कार्य का निर्देशन करे, परंतु इसका मतलब है कि हम उसके पीछे खड़े होंगे, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, हम उसका शुद्ध नाम का बचाव करेंगे और हम उसके निर्देश को मानने का प्रयत्न करेंगे जैसे प्रभु निर्देशक देगा। जीवित प्रभु अपने जीवित गिरजा का मार्गदर्शन करता है। प्रभु अपने गिरजे के लिए इच्छा अपने भविष्यवक्ता को प्रकट करता है। कल थॉमस इस मानसून का समर्थन देने की आमंत्रण के बाद हमने उनको समर्थन देने का मौका भी मिला था। प्रथम अध्यक्षता में सलाहकार और 12 प्रेरितों के परिषद के सदस्य जैसे भविष्यवक्ता, दिव्यदर्शी और प्रकटीकर्ता के रूप में उसे सोच के देखिए। हमने 15 पुरुषों को परमेश्वर के भविष्यवक्ता के रूप में समर्थन दिया। वे पुरोहितों की सारी कुंजियों के धारक हैं कि इस युग में पुरुष पर कभी प्रदान किया है। 15 वर्षों की बुलाहट पवित्र पुरोहितत्व हम गिरजा के सदस्यों के रूप में महान सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि इस मार्गदर्शकों के निर्णय सर्वसम्मत होते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हो कैसे आत्मा को परमेश्वर 15 पुरुषों के ऊपर घुमाने से सर्वसम्मति पर लाने की आवश्यकता होती है। ये 15 पुरुष विभिन्न शिक्षा और वयस्क भूमिका के होते हैं। मैं भी बहुत सी बातों के बारे में विभिन्न विचारों के साथ मुझ पर विश्वास करेंगे। 15 पुरुष भविष्यवक्ता, दिव्यदर्शी और प्रकटीकर्ता हैं। जानने की प्रभु की इच्छा क्या होगी जब एकमत तक चुने जाएंगे। वे वचनबद्ध होते हैं। देखने को कि प्रभु की इच्छा सच में पूरी होगी। प्रभु की प्रार्थना का नमूना इन 15 पुरुषों के लिए है जब वे प्रार्थना करते हैं, तेरी मर्जी पूरी हो जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। सबसे बड़े वरिष्ठ प्रेरित के साथ प्रेरित अध्यक्षित कार्यालय के करते हैं। वे वरिष्ठ प्रमाणी सबसे बुजुर्ग पुरुष के अक्सर गिरजे के अध्यक्ष के दफ्तर में लाते हैं। यह निरंतर अवधि परिपक्वता, अनुभव और वैसा व्यापक तैयारी प्रदान करते हैं। आज का गिरजा स्वयं रूप प्रभु के द्वारा संगठित किया गया है। उसने एक विशिष्ट स्थान पर प्रणाली का संचालन करने के लिए रखा है जो अधिकता और बैकअप प्रदान करता है। भविष्यवाणी, मार्गदर्शन या ताकि अनिवार्य बीमारी या असमर्थता जब बुजुर्ग की अवस्था में के साथ आती है के प्रणाली दी जाती है। संतुलन रखने और सुरक्षा गार्ड भरपूर होने से तो कोई एक भी आदमी गिरजे को कभी भी भटका नहीं सकता। वरिष्ठ मार्गदर्शन लगातार शिक्षा देते हैं, जैसे कि एक दिन वे उच्च परिदृश्य में बैठने को तैयार होते हैं। वे प्रभु की वाणी की आत्मा की फुसफुसाहट के द्वारा कैसे सुनते हैं। यद्यपि अध्यक्ष एडवर्ड बेंसन के प्रथम सलाहकार के रूप में सेवा की जो अपने नश्वर जीवन के अंतिम चरणों में थे, अध्यक्ष गॉर्डन बी हिंकली ने समझाया था, दान तो प्रक्रिया जिसे प्रभु ने अपने गिरजे का संचालन करने के लिए रखा है, कोई भी परिस्थिति के लिए प्रबंध किया है। यह महत्वपूर्ण है कि कोई भी शंका ना हो या गिरजे के संचालन के बारे में विचार करे और भविष्यवाणी के उपहारों का अभ्यास करे। प्रेरणा पाने का अधिकार और शासन करने के कामों के लिए, गिरजा के कामों के लिए प्रकरण शामिल जब अध्यक्ष अस्वस्थ हो या पूरी तरह से काम ना कर पा रहे हों। प्रथम और 12 परिषदों के को बुलाया और पुरोहितों की कुंजी को धारण करने को नियुक्त किया जाता है। गिरजे का संचालन करने का अधिकार और जिम्मेदारी होती है, उसकी धर्मविधियों का प्रबंध करना, उनके सिद्धांतों को समझना और उनको स्थापित करना और अभ्यास करना है। जब अध्यक्ष बीमार या दफ्तर के काम सारे कामों को करने में पूरी तरह असमर्थ होते हैं तो उनके दोनों सलाहकार प्रथम अध्यक्षता के परिषद के एक साथ बार-बार होते हैं बराबर होते हैं। वे दिन प्रतिदिन अध्यक्षता का काम करते हैं, परंतु कोई नीतियों विद्या कार्यक्रमों या सिद्धांतों का बड़ा प्रश्न विचार करना हो तो प्रथम अध्यक्षता एवं 12 एक साथ विचारपूर्वक और प्रार्थना के द्वारा विचार करते हैं। पिछले साल जब अध्यक्ष मानसन गिरजे के अध्यक्ष के रूप में सेवा के 5 साल के माइलस्टोन पर पहुंचे, उन्होंने उन के 50 सालों के प्रेरित सेवा पर आभास जताया और यह प्रतिक्रिया दी। उम्र आखिरकार अपना कर हम सब ले से लेती है, इसलिए हमें अपनी आवाज राजा बेमानी के साथ मिलानी है, जिसमें कहा था, लेकिन मुझ में से तुम भी तुम्हारी तरह शरीर और बुद्धि की हर तरह की दुर्बलता है, फिर भी मैं इन लोगों द्वारा चुना गया और अपने पिता द्वारा प्रतिनिष्ठ किया गया और प्रभु के द्वारा इन लोगों का शासक और राजा बनाया गया और मैं उनकी अद्वितीय शक्ति के द्वारा तुम्हारी सेवा अपने पूरे बल बुद्धि और प्रभु के द्वारा दी गई क्षमता के करने के लिए सुरक्षित रखा गया। अध्यक्ष मानसन जारी रखा, सेहत चुनौतियों के बावजूद जो हम पर आती है, हमारे शरीर या मन की किसी भी कमजोरी के बावजूद हम अपनी योग्यता से बेहतर सेवा करते हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि गिरजा अच्छे हाथों में है। प्रथम अध्यक्षता की परिषद और 12 परिषद के लिए प्रणाली बनाई है हमें आश्वासन देती है कि हम हमेशा अच्छे हाथों में रहेंगे और कि जो कुछ आकता है यहाँ चिंता या डरने की जरूरत नहीं है। हमारे धारकर यीशु मसीह जिस का हम अनुसरण करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं और जिसकी हम सेवा करते हैं, हमारा हमेशा परवार है। अध्यक्ष मानसन, इस सच्चाई के लिए आपका धन्यवाद और आपके जीवन भर के उदाहरण और समर्पण के लिए धन्यवाद। मैंने दुनिया भर के गिरजा के सदस्यों से बोलने को अनुमति दूं, हमारी एकता और आपके लिए आभार की सच्ची भावना व्यक्त करता हूं। हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपसे प्रे करते हैं, हम ऊपर हाथों के उठाने के साथ ही नहीं परंतु हमारे पूरे हृदय से और प्रयत्नों से आपका समर्थन करते हैं। नम्रता और उत्साह से हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं रहेंगे, हमारे प्रिय भविष्यवक्ता, यीशु मसीह के नाम से आमीन।
Our Father in heaven loves.
हमारे स्वर्ग में पिता अपने सभी बच्चों से प्रेम और कामना करते हैं कि वे जाने उसके आनंद की योजना को समझें, इसलिए वे भविष्यवक्ताओं को बुलाते हैं, उनको जिन्हें परमेश्वर के नाम में बच्चों का उद्धार करने के लिए शक्ति और अधिकार से नियुक्त किया जाता है। वे नेकता के दूत यीशु मसीह और उसके प्रायश्चित की असीम शक्ति के गवाह होते हैं। वे पृथ्वी में परमेश्वर के राज्य की कुंजी धारक और बचाने की धन विधियों को करने के अधिकारी होते हैं। प्रभु के सच्चे गिरजा में जहां उस समय पृथ्वी पर तब तक न कोई था जिस पर पौरोहित की कुंजियों की शक्ति की पुष्टि की जाती। हम अध्यक्ष थॉमस एस मानसन का हमारे भविष्यवक्ता दिव्य दर्शी और प्रकटीकर्ता के स्वरूप में समर्थन करते हैं। वे हमारे पूरे गिरजा को प्रभु के शब्दों का प्रकटीकरण और मार्गदर्शन का निर्देशन करते हैं। जैसे अध्यक्ष जेरुबिन क्लर्क ने समझाया था, वे अकेले ही गिरजाघर के लिए प्रकटीकरण प्राप्त करने का या उपस्थित सिद्धांत में किसी भी तरह से बदलाव करने का अधिकार रखते हैं। जीवित भविष्यवक्ता पर विचारें, प्रभु ने उसके गिरजा के लोगों को आज्ञा दी, तुम्हें उसके सारे शब्दों आज्ञाओं को सुनने उसने जो हमको दी हैं उसके सम्मुख पूरी पवित्रता से चलें। उसके शब्द से तुम पाओगे जैसे यह मेरे मुख से हो, सारे धैर्य और विश्वास में, क्योंकि ऐसा करने से नरक का दरवाजा तुम्हारे विरुद्ध प्रबल न होगा। स्वर्ग के पवित्र उद्देश्य के साथ समन्वय में हम भविष्यवक्ता का समर्थन करते हैं और उनके शब्दों के अनुसार जीते हैं। हम अध्यक्ष मॉनसन के सलाहकारों का और बड़ा प्रेरितों के परिषद के भविष्यवक्ता, दिव्य दर्शी और प्रकटीकर्ता के रूप में समर्थन करते हैं। उनके पास प्रभु के मन की इच्छा की गिरजा का अध्यक्ष के विषय में घोषणा करने का हक, क्षमता, अधिकार होता है। वे मसीह के नाम में बोलते हैं, वे मसीह के नाम में भविष्यवाणी करते हैं, वे यीशु मसीह के नाम में सारे काम करते हैं। उनके वचनों में हम उद्धारकर्ता के प्रेम का एहसास होता है और जो कुछ ये पवित्र आत्मा के द्वारा से कहते हैं धर्मशास्त्र होता है, परमेश्वर की शक्ति से उद्धार होता है। प्रभु स्वयं बोला था, चाहे मेरी आवाज के द्वारा हो या मेरे सेवकों के द्वारा, यह सामान्य है। हम गिरजा के आभारी हैं और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह ही यीशु स्वयं है, बनाया गया है। प्रभु का घर एक आदर्श घर होता है और हमें कभी भी उसके विषय में दुखा खाने की जरूरत नहीं है कि हम अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए कहाँ देखना है या किसकी आवाज का अनुसरण करना है। हम उसके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों। परमेश्वर अपने शब्दों को उसके नियुक्ति प्राप्त सेवकों को प्रकट करता है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके पास विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं। जब हम भविष्य का वक्ता के शब्दानुसार जीने का चुनाव कर लेते हैं, हम अनुबंध के मार्ग पर होते हैं जो कि अनंत संपूर्णता की ओर ले जाता है। एक अकेली माँ काल के समय जीने के लिए संघर्ष कर रही थी। हम सीख सकते हैं कि भविष्य वक्ता का समर्थन करती है। प्रभु ने भविष्य वक्ता एलिया को सरपत जाने का निर्देश दिया था, जहां पर उस विधवा औरत को ढूंढना था जिसे परमेश्वर ने उसे समर्थन देने की आज्ञा दी थी। जैसे एलिया शहर पहुंचा, उसने उसे लकड़ी बीनते हुए देखा था। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने के लिए थोड़ा सा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं दो लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और बेटे के लिए पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। एलाइजा ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने अपने बेटे के लिए बनाना। कल्पना करें, कठिन क्षण के लिए भविष्यवक्ता ने भूखी माँ से क्या करने को कहा था। वास्तविकता में परमेश्वर स्वयं अपने विश्वासी सेवक के लिए भोजन उपलब्ध करा सकता था, परंतु प्रभु के नाम में काम करना, एलाइजा ने वैसा ही किया जैसे निर्देशन दिया गया था, जिसमें परमेश्वर की बेटी को भविष्यवक्ता का समर्थन कर, जो उसके पास है, बलिदान करने के लिए कहा था। परंतु एलाइजा ने आज्ञाकारिता के लिए भी आशीष का वचन दिया था, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मुंह न भैसाएगा, तब तक न उसे घड़े का मैदा समाप्त होगा और न ही कुप्पी के तेल घटेगा। प्रभु ने विधवा को चुनने की आजादी का अवसर दिया और भविष्यवक्ता के शब्दों का पालन किया। जहां संसार में योग्यता और आत्मिक भुखमरी का काल द्वारा चेतावनी दे रहा है, हमें भविष्यवक्ता का समर्थन करने की आज्ञा है। जैसे हम थामते और दृढ़ता से भविष्यवक्ता के वचन को चुनते हैं, हम गवाही देते हैं कि हमारे पास नम्रता, इच्छा, बुद्धि और प्रभु के समय में विश्वास है। हम भविष्यवक्ता के वचन को सुनते हैं जब हमें अकारण असुविधा और बेचैनी होने लगती है। संसार के स्तर अनुसार भविष्यवक्ता का अनुसरण करना आलोकप्रिय नीति तौर पर सही नहीं या समाज में अस्वीकार्य हो सकता है, परंतु भविष्यवक्ता का अनुसरण करना हमेशा सही होता है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रखना। प्रभु उनके आदर और हक में होता है जो कि भविष्यवाणी निर्देशन को सुनते हैं। सरपत की विधवा के लिए आज्ञा का पालन कर एलिजा ने उसका जीवन और आखिरकार उसके बेटे का जीवन बचाया था। जैसे भविष्यवक्ता ने वादा किया था, वह उसका घर कई दिनों तक खाते रहे, प्रभु के शब्दों के अनुसार जो एलिजा द्वारा बोले गए थे। प्रभु उनको खिलाता है जो उस पर विश्वास करते हैं। भविष्यवक्ता के वचन हमारी आत्मा का मन्ना है। जब हम लेते हैं, हम आशीषित, सुरक्षित और सांसारिक और आत्मिक होते हैं। जब हम उनके शब्दों पर पर्व मनाते हैं, हम सीखते हैं कैसे मसीह के पास आना और जीना है। एल्डर ब्रूस आर मैकॉन्की ने लिखा था कि भविष्यवक्ता के द्वारा प्रभु ने उद्धार की सच्चाई का ज्ञात कराया था, उद्धार जो मसीह में है और उसका लेखा अनंत जीवन की ओर गति से ले जाता है। हम युग में प्रभु अपने लोगों को उस समय जब वे जोखिम और खतरे की जरूरत होती है उन्हें निर्देशन देते हैं, और आगे के दिनों में समय आएगा जब कुछ परंतु परमेश्वर का ज्ञान होगा, स्वर्ग से नीचे उतरेगा और भविष्यवक्ताओं के लबों से बहेगा, अपने लोगों को बजाएगा। मेरे लिए भविष्यवक्ता के वचन मेरी लॉरल शिक्षिका द्वारा सिखाए गए, जिसने मुझे अनुबंधित विवाह का रिश्ता कैसा होना चाहिए का दिव्य दर्शन दिखाया था। भविष्यवक्ता के वचन ने मुझे आशा और विश्वास दिया था कि मैं उसकी तैयारी का एक सुखद परिवार प्राप्त कर सकूं। लगातार भविष्यवक्ता की शिक्षा का अध्ययन करते रहें, दोनों प्राचीन और आधुनिक का लंबे कड़े परिश्रम के दौरान और अक्सर थके हुए सालों को सहते हुए शिक्षा देते और 7 बच्चों का पोषण करते हुए बिताए। भविष्यवक्ता के वचन धर्मशास्त्रों में और इस पुलपित से सीखे जाने वाले शब्द दिलासा, प्रेम, शक्ति और अच्छे उत्साह के साथ हम सभी का आलिंगन करते हैं। जब हम भविष्यवक्ताओं के शब्दों को सुनते हैं, हम अपने घर और अपने जीवन को अनंत जीवन की नींव पर रखते हैं। तुम्हें अपने उद्धारकर्ता जो कि परमेश्वर का पुत्र मसीह है, कि जब शैतान अपनी प्रबल हवा के झकोरों को, हाँ बवंडर के धुरों को, अभी अपने ओले और भीषण आंधियों के थपेड़ों को तुम्हारे ऊपर भेजे, तब उसके पास वह शक्ति न होगी जो तुम्हें खींच कर संतापों अनंत दुखों की खाई में फेंक सके। हमारे पास विकल्प है, हमें उपेक्षा करना छोटी सी बात के साथ उस पर ठोकर मारना, या मसीह के शब्दों को जो उसके नियुक्त सेवकों द्वारा बोले जाने के विरुद्ध करना चुन सकते हैं। परंतु उद्धारकर्ता सिखाता है कि जो ऐसा करते हैं उन्हें उसके अनुबंध से अलग किया जाएगा। जैसे हम पवित्र भविष्यवक्ता के शब्दों को मसीह में विश्वास के साथ प्रार्थना पूर्वक पढ़ते और अध्ययन करते हैं, सच्ची भावना के साथ पवित्र आत्मा हमारे मनों और हृदयों में सच्चाई बयान करेगा। अपने कानों को खोल दो जिससे कि तुम सुनो, और अपने हृदय को खोल दो जिससे कि तुम समझो, और अपनी बुद्धि का पर्दा हटा दो जिससे कि परमेश्वर के गुप्त रहस्यों को तुम्हारी दृष्टि के समक्ष खोल दिया जाए। मैं अपनी गवाही देती हूँ कि जोसेफ स्मिथ परिवार परमेश्वर का बुलाया हुआ यीशु मसीह के सुसमाचारों को, उसके पौरोहित्य को पृथ्वी पर पुनर्स्थापित करने वाला भविष्यवक्ता था और है। और मैं गवाही देती हूँ कि अध्यक्ष मॉन्सन आज परमेश्वर के भविष्यवक्ता है। उनके द्वारा हम निर्देशन पाते हैं, हम भविष्यवक्ता के साथ खड़े होना चुन सकते हैं, उनके शब्द के अनुसार जी सकते हैं। जब तक हम विश्वास में एक ना हो जाएं, मसीह में शुद्ध हो जाएं और परमेश्वर के पुत्र के नाम से बढ़ जाएं, यीशु मसीह के नाम में आमीन।
The choir and congregation will now stand.
अब गायक मंडली और कलीसिया साथ खड़ी होकर और मिलकर गाएगी कम यू चिल्ड्रन ऑफ द लॉर्ड। गीत गाए जाने के बाद हम एल्डर रॉबर्ट डी हेल्स 70 के से सुनेंगे। उनके बाद एल्डर जेम्स जे हमला 70 के होंगे। उनकी टिप्पणी के बाद गायक मंडली गाएगी सॉफ्टली एंड टेंडरली।
This is the 184th
Samayan. ये अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह की गिरजे का 184th अर्धवार्षिक महासम्मेलन है। बहुत साल पहले मैंने प्रत्येक युग में भविष्यवक्ताओं की अंतिम गवाहियों का अध्ययन करना चुना था। प्रत्येक ने परमेश्वर पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह की शक्तिशाली गवाही दी थी। जब मैंने इन गवाहियों और इन जैसे बहुत सी अन्यों को पढ़ा, इसने मेरे हृदय को यह जानने के लिए छुआ कि स्वर्गीय पिता कितनी गहराई से अपने सबसे बड़े पुत्र से प्यार करता है और कैसे यीशु मसीह अपने प्रेम को उसके पिता की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी रहकर प्रकट करता है। मैं प्रमाणित करता हूं कि जब हम उसे करते हैं जो उन्हें और एक दूसरे के प्रति उनके प्रेम को जानने के लिए आवश्यक है उसे करते हैं, हम परमेश्वर के सब उपहारों में उत्तम अनंत जीवन प्राप्त करेंगे, क्योंकि अनंत जीवन यह है कि वे तुझे अद्वितीय सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। ये उपहार किस प्रकार हमारा हो सकता है? क्या आपको याद है पहली बार आपको पता चला था कि परमेश्वर और उसके प्रेम को महसूस कर सकते थे? एक बालक के रूप में मैं तारों भरे आकाश को देखा करता था और उसकी उपस्थिति को महसूस करता था। मैं परमेश्वर की सृष्टि, छोटे छोटे कीड़ों से लेकर ऊंचे ऊंचे वृक्षों की शानदार सुंदरता की खोज करके उत्साहित होता था। जब मैंने इस पृथ्वी को पहचाना, मैं जान गया कि स्वर्गीय पिता मुझे प्रेम करता था। मैं जान गया मैं सच में उसकी आत्मिक संतान हूँ, कि हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियाँ हैं। मुझे ये कैसे पता चला, आप पूछ सकते हैं। धर्मशास्त्र सिखाते हैं, कुछ को यह पवित्र आत्मा द्वारा बताया गया कि यीशु मसीह परमेश्वर पुत्र है, और अन्य को उनके शब्दों पर विश्वास करने को दिए गए, ताकि वह भी अनंत जीवन पाए यदि वे निरंतर विश्वासी रहते हैं। मेरे दृष्टिकोण से इसका अर्थ यह नहीं है कि कुछ लोग हमेशा दूसरों की गवाहियों पर निर्भर रहेंगे। मेरी स्वयं की गवाही का विकास होता है जब मैं स्वर्गीय पिता और उद्धारकर्ता के बारे में अपने माता पिता, शिक्षकों, धर्मशास्त्रों और विशेषकर पवित्र आत्मा की शिक्षाओं और गवाही से सीखता हूँ। जब मैं विश्वास का उपयोग करता और आज्ञाओं का पालन करता हूँ, पवित्र आत्मा गवाही देती है कि जो मैं सीख रहा था वह सच है। इस प्रकार मुझे स्वयं पता चला था।
For myself, in this process, seeking.
इस प्रक्रिया में खोजना महत्वपूर्ण है। नफी हम सबों को निमंत्रण देता है, मसीह के वचनों में आनंदित रहो, क्योंकि देखो, मसीह के वचन तुम्हें वह सब बातें बताएंगे जो तुम्हें करनी चाहिए। मेरे 8वें जन्मदिन से पहले मैं बपतिस्म के विषय अधिक जानने की कोशिश की थी। मैंने धर्मशास्त्र को पढ़ा और प्रार्थना की। मैंने सीखा कि मुझे पवित्र आत्मा का उपहार मिलेगा जब मेरा पुष्टिकरण किया जाएगा। मैंने ये समझना आरंभ कर दिया था कि परमेश्वर और मसीह वास्तव में पिता और पुत्र हैं, अलग अलग भिन्न व्यक्ति हैं जो अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से एक है। हम उनसे इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उन्होंने हमसे प्रेम किया, और बार बार मैं देखा वे एक दूसरे में कितना प्रेम करते हैं और मिलकर हमारी भलाई के काम करते हैं। बहुत से धर्मशास्त्रों में से कुछ सुने जो इस सच्चाई को सिखाते हैं। हमारी नश्वरता पूर्व जीवन के बारे में सिखाते हुए स्वर्गीय पिता ने यीशु मसीह को अपना पुत्र बताया था, जो कि आरंभ से ही मेरा प्रिय और चुना हुआ था। जब पिता ने पृथ्वी की रचना की थी, तो उसने ऐसा अपने एक लौते पुत्र के द्वारा किया। यीशु की माता मरियम को बताया गया था कि वह परम प्रधान का पुत्र उत्पन्न करेगी, और जब यीशु बड़ा हुआ उसने अपनी माँ से कहा कि मैं अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। सालों बाद जब उद्धारकर्ता का बपतिस्मा हुआ था, स्वर्गीय पिता ने आकाश से घोषणा की कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अपने शिष्यों को प्रार्थना सिखाने के लिए यीशु ने इन शब्दों को बोला, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। उसने निकोदमस को सिखाया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लौता पुत्र दे दिया, और उसने उसके चमत्कारों की व्याख्या यह कहते हुए कि पुत्र अपने से कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। जब प्रायश्चित का समय निकट आया, यीशु ने ये कहते हुए प्रार्थना की कि हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है अपने पुत्र की महिम कर, जो काम आपने मुझे करने को दिया था पृथ्वी पर आपकी महिमा की है। फिर जैसे ही हमारे पापों का बोझ उस पर गिरा, उसने याचना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो। सलीब पर अपने अंतिम क्षणों में यीशु ने प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और फिर चिल्लाया, हे पिता, मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूँ। फिर वह उन आत्माओं के पास गया जो मर चुकी थी। मृत्यु से अपने पुनरुत्थान के बाद उसके पिता के राज्य में प्रवेश करने के लिए उन्हें जी उठने की शक्ति दी। उद्धारकर्ता ने पुनरुत्थान के बाद वह मरियम मैग्दली को यह कहते हुए दिखाई दिया, मैं अपने पिता और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। जब वह अमेरिकी द्वीप पर लोगों से मिलने आया, उसके पिता ने यह कहते हुए उसका परिचय करवाया, देखो मेरे प्रिय पुत्र, जिससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, जिसमें मैंने अपने नाम को गौरवान्वित किया है। जब वह लोगों के मध्य उतरा, उसने अपना परिचय ये कहते हुए दिया, देखो मैं यीशु मसीह हूँ, मैंने संसार के पापों और को अपने ऊपर लेकर पिता को गौरवान्वित किया है। जब यीशु ने अपना सिद्धांत सिखाया, उसने समझाया, और ये मेरा सिद्धांत है और मेरा सिद्धांत वही है जिसे पिता ने मुझे दिया है, और मैं पिता की साक्षी देता हूँ और पिता मेरी साक्षी देता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पिता और मैं एक ही हैं। क्या हम इन धर्मशास्त्र स्वरूप को देख सकते हैं जो पिता और पुत्र को अलग अलग भिन्न व्यक्ति प्रमाणित करता? वे कैसे एक हैं? वे इसलिए एक नहीं क्योंकि वे एक व्यक्ति हैं, लेकिन इसलिए एक हैं क्योंकि उनका उद्देश्य मानव के लिए अमरत्व और अनंत जीवन लाना है। यीशु परमेश्वर है, फिर भी वह अपने आप को निरंतर प्रार्थना करने के द्वारा और यह कहते हुए कि वह अपने पिता की इच्छा पूरी कर रहा है, एक अलग भिन्न व्यक्ति दिखाता है। नफाइयों के मध्य अपनी सेवकाई के दौरान उसने याचना की, पिता, मैं संसार के लिए प्रार्थना नहीं करता हूँ, परंतु उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्हें तुमने उनके विश्वास के कारण संसार से चुनकर मुझे दिया है, कि वे मुझ में शुद्ध हो सके, कि मैं उनसे वैसे ही विराजमान रहूं जैसे पिता आप मुझ में हो, कि हम एक हो सके, ताकि मैं उनमें गौरवान्वित हो सकूं। इसे ध्यान में रखते हुए हमें आश्चर्य नहीं होता कि सुसमाचार की पुनर्स्थापना एक नहीं दो लोगों के प्रकट होने से आरंभ हुई थी। प्रथम दिव्य दर्शन के विषय बोलते हुए भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ ने प्रमाणित किया था, उनमें से एक ने दूसरे की ओर इशारा करते हुए मुझसे बात की, मेरे नाम लिया और कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। युवा भविष्यवक्ता जो बिना संदेह किए उपवन में गया था ज्ञान और अद्वितीय सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे परमेश्वर ने भेजा था कि गवाही के साथ बाहर निकाला था। जोसेफ अपने से पहले अन्य भविष्यवक्ताओं के सम्मान संसार को उस ज्ञान की पुनर्स्थापना करने के लिए एक औजार था जो अनंत जीवन को ले जाता है। आप भी हमारे स्वर्गीय पिता और इस यीशु को खोजो जिसके विषय में भविष्यवक्ता और प्रेरितों ने 26 धर्मशास्त्र में और इस महासम्मेलन प्रेरितों ने धर्मशास्त्र में और इस महासम्मेलन में प्रमाणित किया है। जब आप खोजते हैं, आपको पता चलेगा कि स्वर्गीय पिता ने एक विशेष मार्ग उपलब्ध कराया है जिसके द्वारा आप स्वयं सच्चाई जान सकते हैं। परमेश्वरत्व के तीसरे सदस्य द्वारा आत्मिक व्यक्तित्व, जिसे हम पवित्र आत्मा के रूप में जानते हैं, मैं तुम्हें उपदेश देना चाहता हूं कि तुम मसीह के नाम में अनंत पिता परमेश्वर से पूछो कि क्या ये बातें सच्ची नहीं है, और यदि तुम सच्चे हृदय के साथ वास्तविक उद्देश्य से मसीह में विश्वास करते हुए पूछोगे, तो वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा तुम पर इसकी सच्चाई प्रकट करेगा। और पवित्र आत्मा के समर्थ द्वारा तुम सारी बातों की सच्चाई जान सकते हो। भाइयों और बहनों, मैं प्रमाणित करता हूं कि हमारा स्वर्गीय पिता चाहता है कि हम इस ज्ञान को खोज अभी करें। भविष्यवक्ता हिलमन के शब्द धरती से पुकारते हैं, याद रखो कि यह मुक्तिदाता की चट्टान पर है जो कि परमेश्वर का पुत्र मसीह है, जिस पर तुम अपनी नींव रख सको, और ऐसा आधार जिस पर यदि मनुष्य का निर्माण हो तो वे गिर नहीं सकते। ये सुदृढ़ आधार यीशु मसीह है, वह स्वर्ग की चट्टान है। जब हम अपने घरों का निर्माण उस पर करते हैं, अंत के दिनों वर्षा गिरे, बाढ़ आए और प्रचंड वायु चले, लेकिन हम नहीं गिरेंगे क्योंकि हमारे घर और हमारे परिवार मसीह पर आधारित हैं। मैं गवाही देता हूं, ऐसा घर महिमा का घर है। यहां हम अपने स्वर्ग के पिता से उसके प्रिय पुत्र के नाम में प्रार्थना करने के लिए एकत्रित होते हैं। यहां हम उन्हें महिमा देते और आभार प्रकट करते हैं। यहां हम पवित्र आत्मा और प्रतिज्ञा प्राप्त करते हैं जो वे हमें अनंत जीवन और सेलेस्टियल राज्य की महिमा के रूप में देता है। मैं अपनी विशेष गवाही देता हूं कि हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह जीवित है। हमारा अनंत स्वर्गीय पिता हमसे प्रेम करता और हमारा ख्याल रखता है। पवित्र आत्मा गवाही देती है कि यह सच है।
To each who goes and seeks the knowledge in the name of Jesus Christ.
Yeshu Masih ke naam mein. Amen.
On the eve of Gethsemane and Calvary,
क्रूसारोहण और प्रायश्चित से पूर्व यीशु ने अपने प्रेरितों अंतिम बार प्रार्थना के लिए एकत्रित किया था। यह यरूशलेम में एक विशेषज्ञ के घर में ऊपर का कमरा था और फसह का पर्व का समय था। उनके सामने एक परंपरागत फसह का भोजन रखा गया था, जिसमें बलि किया हुआ भेड़ का मांस, मदिरा और अखमीरी रोटी इज़राइल की दास तव्य के उद्धार का प्रतीक और भविष्य की मुक्ति जो कि अभी होनी बाकी थी। जब भोजन समाप्त होने लगा, यीशु ने रोटी ली, प्रार्थना की और इसे तोड़ा और अपने प्रेरितों को यह कहते हुए दी, लो खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी याद यही किया करो। इसी प्रकार अपने मदिरा का प्याला लिया, उस प्रार्थना की और उसने चारों ओर बैठे प्रेरितों को यह कहते हुए दिया, यह प्याला मेरे लहू में नई वाचा है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है, मेरी याद यही किया करो। इस साल परंतु अत्यंत गंभीर तरीके यीशु ने अनुबंधित लोगों के लिए एक नई विधि को स्थापित किया। मसीह जो कि आने वाला था कि मुक्ति के बलिदान की आशा के कारण अब किसी पशु का लहू नहीं बहाया जा या खाया जाएगा। इसके स्थान पर मसीह जो कि आ चुका था कि तोड़े गए शरीर और बहाए गए लहू के प्रतीकों को उसकी मुक्ति दिलवाने बलिदान की याद खाया और पिया जाएगा। इस नई विधि में भाग लेने वालों के लिए यह यीशु की प्रतिज्ञा किया हुआ मसीह को स्वीकार करने और संपूर्ण हृदय से उसका और उसकी आज्ञाओं का पालन करने की औपचारिक स्मृति को प्रदर्शित करता है। जो ऐसा प्रदर्शित करेंगे और अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे, अंतिम मृत्यु और उनसे दूर रहेंगे और उन्हें अनंत जीवन मिलेगा।
would be assured. In the hours that followed,
इसके बाद के समय में यीशु ने गतसमनी में प्रवेश किया, उसे कालवरी ले जाया गया और वह अरिमतिया की कब्र से विजयी होकर निकला। उसके स्वर्ग रोण के पश्चात यरूशलेम के आसपास के यीशु के विश्वासी शिष्य सप्ताह के पहले दिन रोटी तोड़ने के लिए एकत्रित होते और ऐसा दृढ़ता पूर्ण करते रहे। अवश्य ही वे ऐसा न केवल अपने चले गए ये प्रभु की याद में, बल्कि उनके लिए उसकी अद्भुत मुक्ति के प्रति आभार और विश्वास प्रकट करने के लिए करते थे। विशेष पूर्व से जब यीशु अमेरिका में अपने शिष्यों से मिले, उसने उनके बीच भी प्रतिभोज स्थापित किया था। ऐसा करते हुए उसने कहा, ऐसा हमेशा किया जाना चाहिए और पिता के सम्मुख गवाही होगी कि तुम मुझे हमेशा याद रखते हो। फिर पुनः स्थापन के आरंभ में उन्हें वही निर्देश देते हुए जो अपने पहले शिष्य को दिए, प्रभु ने प्रभु भोज की विधि को स्थापित किया। प्रभु भोज की विधि गिरजे के अत्यधिक पवित्र और पावन विधियों में से एक है। यह हम सब के लिए अधिक तरीप पवित्र और पावन विधि होनी चाहिए। यीशु मसीह ने स्वयं इस विधि को स्थापित किया था ताकि हम स्मरण रख सकें कि उसने हमें बचाने के लिए क्या किया और सीख सके कैसे हम अपने लिए मुक्ति प्राप्त कर सकें, फिर से परमेश्वर के साथ रह सकते हैं। काटी और तोड़ी रोटी के रूप में आप प्रदर्शित करते हैं कि हम यीशु के भौतिक शरीर को स्मरण करते हैं, एक ऐसा शरीर जिसे थूके जाने, थप्पड़, घूसों, कोड़ों से हर प्रकार का दर्द, कष्ट और लोभ हुआ था, एक ऐसा शरीर जिसने इतनी यातना सही कि रोम रोम से लहू बहाने लगा, एक ऐसा शरीर जिसका मांस क्रूसारोहण पर काटा गया और हृदय टूट गया था। हम अपने विश्वास को प्रदर्शित करते हैं कि वही शरीर जिसे मृत्यु के पश्चात कब्र में रखा गया था, वह फिर कहीं कभी ना बीमार होने, सड़ने या मरने के लिए कब्र से बाहर निकाला गया था। और रोटी को खाने से हम स्वीकार करते हैं कि मसीह के नाश्वर शरीर के समान हमारे शरीर भी मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर विजयी होकर कब्र से निकलेंगे और अपनी अनंत आत्मा को पुनः प्राप्त करेंगे। पानी के छोटे से कप से हम प्रदर्शित करते हैं कि हम स्मरण करते हैं कि यीशु ने संपूर्ण मानव जाति के लिए लहू बहाया और आत्मिक कष्टों को सहा था। हम उस यातना को भी स्मरण करते हैं जिसके कारण लहू की बूंदें गतसमनी में गिरी थी। हम उन घावों और कोड़ों को स्मरण करते हैं जो उसने पकड़ने वालों के हाथों खाए हैं। हम उस लहू को स्मरण करते हैं जिसके हाथों, पैरों और बगल से कालवरी पर बहाया था, और हम स्मरण करते हैं जो उसने कष्ट के संबंध में अपने कहा था कि तुम्हें नहीं पता यह कितना तीव्र, कितना पीड़ादायक और सहने के लिए कितना कठिन था। पानी को स्वयं के लिए लेकर हम स्वीकार करते हैं कि उसका लहू और कष्ट हमारे पापों के लिए थे और कि वह हमारे पापों का मूल्य चुकाएगा। जब हम स्विच से उसके सुसमाचार के नियमों और विधियों को स्वीकार करेंगे, इस प्रकार रोटी और पानी के साथ हमें मृत्यु और पाप से हमारे लिए मसीह की मुक्ति की याद दिलाई जाती है। रोटी को पहले और पानी को बाद लेना महत्वपूर्ण है। रोटी को ग्रहण करते हुए हम निश्चित व्यक्तिगत पुनर्स्थापन को स्मरण करते हैं जो कि मात्र शरीर और आत्मा के मिलन से अधिक है। पुनर्स्थापन की शक्ति के द्वारा हम सभी परमेश्वर की उपस्थिति में वापस जाएंगे। यह सच्चाई हमें हमारे जीवन का मूलभूत को प्रस्तुत करती है। मूलभूत प्रश्न जिसका हम सामना करते हैं यह नहीं कि है कि क्या हम मरने के पश्चात जीवित होंगे, बल्कि यह है कि हम किसके साथ रहेंगे।
Well, every one of us will return to the presence of God. Not every one of us.
हम से प्रत्येक परमेश्वर की स्थिति में वापस जाएंगे, लेकिन सभी उसके साथ नहीं रहेंगे। नाश्वरता के कारण, हम से प्रत्येक पाप और उल्लंघन के कारण भ्रष्ट हो जाता है। हमारे विचारों, शब्दों और कामों के कारण हमारी पवित्रता कम हो जाती है, अर्थात हम अशुद्ध हो जाते हैं। और परमेश्वर के सम्मुख अशुद्धता के परिणाम स्वरूप यीशु ने स्पष्ट रूप से बताया था, उसकी उपस्थिति में अशुद्ध वस्तु नहीं रह सकती है। इस सच्चाई ने इस सच्चाई ने छोटे आलमा जिसका सामना पवित्र दूत से हुआ, अपने अशुद्धता से दुखी, भयभीत और व्याकुल से उसने सोचा कि उसे बाहर निकाला दिया जाएगा और शरीर और आत्मा में दोनों रूप से नष्ट हो जाऊंगा, उसे परमेश्वर की उपस्थिति में ना लाया जा सकेगा। प्रभु भोज का पानी लेने से हमें सिखाया जाता है किस प्रकार हम पाप और उल्लंघन से शुद्ध किए जाते हैं और इस प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। अपना निर्दोष लहू बहाने के कारण यीशु ने अपने पाप और उल्लंघन के न्याय की मांग को पूरा किया था। फिर उसने हमारे लिए शुद्ध होने का अवसर दिया। यदि हम पश्चाताप करने के लिए उसमें विश्वास करते हैं और बत्तीसवें से आरंभ करते हुए उद्धार की सब विधियों और अनुबंधों को स्वीकार करते हैं, पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं, पवित्र आत्मा पाने पर हम शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। यीशु ने सिद्धांत को बहुत स्पष्ट किया था। अब यह और कोई भी अशुद्ध वस्तु परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती। मेरे लहू में अपने वस्त्र को साफ किया है और अपने सारे पापों का पश्चाताप किया है। अब यह आज्ञा है, संसार के सभी छोरों के लोगों पश्चाताप करो, मेरे पास आओ, मेरे नाम में बपतिस्मा लो, जिससे कि पवित्र आत्मा के स्वीकारे जाने से तुम्हारे पवित्रकरण हो सके, ताकि अंतिम दिन में तुम मेरे समक्ष निर्दोष खड़े रह सको। यह मसीह का सिद्धांत है। जब हम इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं और अपने अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं, मसीह का लहू हम में प्रभावकारी होता है और हम शुद्ध होते हैं। प्रभु भोज प्रार्थना के द्वारा हम मसीह के सिद्धांत के प्रति अपनी स्वीकृति और इसके अनुसार जीने का दृढ़ निश्चय दिखाते हैं। परमेश्वर हमारे अनंत पिता से प्रार्थना में हम घोषणा करते हैं कि हम उसके पुत्र को हमेशा स्मरण रखेंगे। पहले हम स्मरण रखने की अपनी इच्छा गवाही देते हैं, फिर हम गवाही देते हैं कि हम स्मरण रखेंगे। ऐसा करते हुए हम यीशु मसीह और मृत्यु और पाप से हमारी मुक्ति में विश्वास रखने का दृढ़ निश्चय करते हैं। हम फिर घोषणा करते हैं कि हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। यह पश्चाताप करने का दृढ़ निश्चय है। यदि हमारे विचार, शब्द और कार्य पिछले दिनों अपेक्षा से कम रहते हैं, फिर से दृढ़ निश्चय लेते हैं कि आने वाले दिनों में अपने जीवनों को उनके अनुसार जिएंगे। इसके बाद हम घोषणा करते हैं कि हम उसके नाम को अपने ऊपर लेने की इच्छा करते हैं। यह एक दृढ़ निश्चय है कि हम स्वयं को उसका कार्य करने के लिए उसके समर्पित करते हैं, जिसमें शामिल है अपने लिए सभी बचाने वाली विधियों करना और अनुबंध को बनाना। जब हम स्वयं को इन नियमों के प्रति समर्पित करते हैं, हम प्रति भोज प्रार्थना में वादा करते हैं कि हमारे साथ उसकी आत्मा रहेगी। आत्मा को प्राप्त करना उच्चतम आशीष है, क्योंकि आत्मा हमें पाप और उल्लंघन से शुद्ध और पवित्र करती है। भाइयों और बहनों, समय और अनंत काल में यीशु मसीह का प्रायश्चित अति महत्वपूर्ण घटना है। जिसने प्रायश्चित को पूरा किया था, उसने हमें प्रभु भोज की विधि दी है, जिससे न केवल हम स्मरण करते बल्कि अनुग्रह के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी की सभी आशीषों को पा सकते हैं। इस पवित्र विधि में निरंतर और सच्ची भागीदारी में हमें बपतिस्मे के पश्चात मसीह के सिद्धांत को स्वीकार करने और जीने में मदद मिलती है और इस प्रकार पवित्रकरण की प्रक्रिया आरंभ और पूरी होती है। अवश्य ही प्रभु भोज की विधि में हमें विश्वासी होकर अंत तक धीरज रखने और पिता की परिपूर्ण को उसी प्रकार प्राप्त करने में मदद करती है जैसे मसीह ने की थी, अनुग्रह और पर अनुग्रह। पिता परमेश्वर को आमने सामने देखने और रहने की तैयारी के लिए हम सबों को मृत्यु और पाप की मुक्ति दिलाने के लिए यीशु मसीह और प्रभु बोध सहित उसके पौरोहित्य की विधियों की शक्ति की मैं अपनी गवाही देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि हम अगले सप्ताह और उसके बाद प्रत्येक सप्ताह अधिक गहन इच्छा और अच्छी अधिक सच्चे उद्देश्य से प्रभु भोज को लेंगे। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन।
We are grateful to the Mormon
Tabernacle. हम आभार प्रकट करते हैं मॉर्मन गायक मंडली जिन्होंने आज सुबह सुंदर संगीत उपलब्ध कराया है. इस सम्मेलन के समापन पर हम अपने प्रिय अध्यक्ष प्रेसिडेंट थॉमस एस मॉन्सन को सुनेंगे. उनकी टिप्पणी के बाद अंत में गायक मंडली हाउ फॉर्म ए फाउंडेशन गाएगी और समापन प्रार्थना बहन रोजमेरी एमिक्सन प्राथमिक जनरल अध्यक्षता में अध्यक्ष द्वारा दी जाएगी.
My beloved brothers and sisters,
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज सुबह आपके सामने खड़े होते हुए मैं बहुत ही विनम्र हूँ. आप अपने संदेश को आपके साथ बांटते हुए मैं अपने लिए आपके विश्वास और प्रार्थनाओं की मांग करता हूँ. हम सब एक शानदार और जरूरी यात्रा को आरंभ किया था जब हमने आत्मिक संसार छोड़ा और इस अक्सर चुनौती भरी नाश्वरता में प्रवेश किया. पृथ्वी पर हमारा मुख्य उद्देश्य मांस और हड्डी का शरीर पाना है ताकि उस अनुभव को प्राप्त कर सकें जो हम केवल आत्मिक माता पिता की उपस्थिति से अलग रहकर ही पा सकते हैं. और जांच करें क्या हम आज्ञाओं का पालन करते हैं. इब्राहिम की पुस्तक अध्याय 3 में हम पढ़ सकते हैं और हम उसे उन्हें साबित करने देंगे कि वे उन सब कामों को करते हैं जो उनके प्रभु परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए आज्ञा दी है. जब हम पृथ्वी पर आए हम अपने साथ परमेश्वर से उस महान उपहार को लाए चुनने की स्वतंत्रता. हजारों तरीके से हम स्वयं के लिए चुनाव कर सकते हैं. हम यहाँ कठिन अनुभवों से सीखते हैं. हम अच्छे और बुरे को जानते हैं. हम मीठे और कड़वे में अंतर कर सकते हैं. हम सीखते हैं कि निर्णयों से नियति बनती है. मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि हम पिता के पास लौटने की तीव्र इच्छा से के साथ वहां से निकले थे ताकि हम उस उत्कर्ष को प्राप्त कर सकें जो उसने हमारे लिए बनाया था और जिसे हम समय बहुत चाहते थे. यद्यपि हम उस मार्ग को खोजने और उस पर चलने के लिए निकले थे जो हमें स्वर्ग पिता के पास ले जाएगा, लेकिन उसने हमें बिना मार्गदर्शन और निर्देशन के यहाँ नहीं भेजा है. असल में उसने हमें जरूरी औजार दिए हैं और वे हमारी मदद करेगा जब हम उसकी मदद की खोज करते. जो कुछ हमारे लिए संभव है उसे करते और अंत जीवन प्राप्त करते हैं. हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे पवित्र शास्त्रों में पाए परमेश्वर और उसके पुत्र के वचन हैं. हमारे पास परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं की सलाहें और शिक्षाएं हैं. सबसे महत्वपूर्ण हम एक परिपूर्ण उदाहरण दिया गया है. हमारा प्रभु और मुक्तिदाता यीशु मसीह और हमें उसका अनुसरण करने का निर्देश दिया गया है. उदाहरणकर्ता ने स्वयं कहा था मेरे पीछे हो लो, जो काम तुम मुझे करते देखते हो उसे करो. उसने एक प्रश्न पूछा था तुम्हें किस प्रकार का मनुष्य बनना चाहिए और फिर उसने उत्तर दिया मैं तुमसे सच सच कहता हूं जैसा मैं हूं. उसने मार्ग दिखाया और उस पर चला. हम यीशु को अब हमारे लिए उदाहरण के रूप में देखते हैं और जब हम उसके कदमों पर चलते हैं हम सुरक्षित स्वर्गीय पिता के पास हमेशा रहने के लिए जा सकते हैं. नफी ने कहा था जब तक कि मनुष्य जीवित परमेश्वर के पुत्र के उदाहरण का अनुकरण करते हुए अंत तक धीरज न धरे वह बचा नहीं जा सकता. एक स्त्री हर बार पवित्र भूमि की अपनी यात्रा के दौरान हुए अनुभवों के बारे में बताते हुए जोर जोर से बोलकर बताती थी मैं उस मार्ग पर चली थी जहां यीशु चला था. मैं उस स्थान के निकट रहती थी जहां यीशु रहा और सीखता था सिखाता था. शायद वह उस चट्टान पर खड़ी हुई होगी जहां कभी वह खड़ा हुआ था या उन पहाड़ियों को देखा होगा जिसे उसने देखा था. यह अनुभव उसके लिए बहुत रोमांचकारी थे लेकिन शारीरिक रूप से उन मार्गों पर चलना जिन पर यीशु चला था उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसके समान चलना, उसके कर्मों की नकल करना और उसके उदाहरणों का पालन करना अधिक महत्वपूर्ण है, ना कि उन स्थान पर चलना जहां वह नाश्वरता में चला था। जब यीशु ने एक अमीर व्यक्ति को निमंत्रण दिया, मेरे पीछे आओ, उसका अर्थ मात्र ये नहीं था जहां जहां मैं पहाड़ियों और घाटियों में जा रहा हूं अमीर व्यक्ति भी वहां वहां उसके पीछे चले। हमें गलील के तट पर या यहूदा की पहाड़ी पर चलने की जरूरत नहीं है जहां यीशु चला था। हम सब उसके वचनों को अपने अपने मनों में रखते हुए उस मार्ग पर चल सकते हैं जिस पर वह चला था। जब उसकी आत्मा हमारे हृदयों को भरती है और उसकी शिक्षाएं हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती हैं, नाश्वरता की अपनी यात्रा के दौरान हम उसका अनुसरण का चुनाव करते हैं। उसके उदाहरण मार्ग के लिए ज्योति हैं। उसने कहा था, मार्ग सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। जब हम यीशु के चले मार्ग की जांच करते हैं, हम देखेंगे कि वह उन्हीं बहुत सी चुनौतियों से गुजरा था जिनका सामना हम अपने जीवन में करते हैं। उदाहरण के लिए, यीशु निराशा के मार्ग से गुजरा था। यद्यपि उसने बहुत सी निराशाओं का सामना किया था, उनमें से एक जो उसके भावनात्मक दुख को प्रदर्शित करती वह यरूशलेम में उसका अपनी सार्वजनिक सेवकाय को बंद करना थी। इसराइल के बच्चों ने सुरक्षा करने वाले पंखों को अस्वीकार कर दिया था जो उसने उन्हें उपलब्ध कराए थे। जब उसने उस शहर को देखा जिसका जल्दी विनाश होने वाला था, वह बहुत दुखी हुआ। पीड़ा से वह चिल्ला उठा था, हे जेरूशलेम, हे जेरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पथराव करता है, कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे मैं तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने ये ना चाहा। यीशु लालच के मार्ग पर चला था। लूसीफर ने अपने संपूर्ण शक्ति से उसके अत्यधिक लुभाने वाले झूठों से उसे लालच दिया था, जो 40 दिनों और 40 रातों से उपवास में था। यीशु झुका नहीं, बल्कि उसने लालच का सामना किया। उसने कहा, हे शैतान, दूर हो जा। यीशु कष्ट के मार्ग से गुजरा था। गेतसेमनी का विचार करें, जहां वह इतने कष्ट में था कि वेदना से और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था, और पीड़ादायक क्रूस पर उसके दर्द को कोई नहीं भूल सकता। हम में से प्रत्येक निराशा के मार्ग पर चलेगा, शायद क्योंकि एक अवसर खो जाता है, शक्ति का गलत उपयोग होता है, किसी प्रिय के चुनाव पर या स्वयं हमारे अपने चुनाव पर। लालच भी हम सब के लिए एक अनुभव है। डॉक्टर एयर काउंट के 29वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, यदि शैतान मनुष्य को लालच ना दे तो वह स्वयं के लिए चुनाव नहीं कर सकता। उसी हम भी हम दर्द के मार्ग पर चलेंगे। हम सेवकों के रूप में स्वामी से अधिक का आशा नहीं कर सकते जितने अत्यधिक कष्ट और दुखों के बाद नाश्वरता को छोड़ा था। जबकि हम अपने मार्ग में कड़वे दुखों को पाते हैं, हम महान खुशियों को भी पा सकते हैं। हम यीशु के साथ आगे कारिता का मार्ग पर चल सकते हैं। यह हमेशा सरल नहीं होगा, लेकिन हमारा नारा शैमूल से विरासत में मिला है, देखो सुन मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेड़ों की चर्बी से उत्तम है। हम याद रखें कि अवज्ञाकारिता का परिणाम केंद्र और मृत्यु है, जबकि आज्ञाकारिता का उपहार मुक्ति और अनंत जीवन है। हम यीशु के समान सेवा के मार्ग पर चल सकते हैं। मनुष्य के बीच यीशु का सेवकाई भरा जीवन हमारे लिए महान अच्छाई का एक उदाहरण है। उसने लंगड़ों को ताकत दी, अंधों को आंखें, बहरों को सुनने की शक्ति दी। यीशु प्रार्थना के मार्ग पर चला था। उसने हमें सुंदर प्रार्थना, जिसे हम प्रभु की प्रार्थना के रूप में जानते हैं, देकर हमें सिखाया था कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। और गेतसेमनी में उसकी प्रार्थना को कौन भूल सकता है? मेरी नहीं, बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। उद्धारकर्ता द्वारा दिए अन्य निर्देश जो हमारी उंगलियों पर हैं, पवित्र धर्मशास्त्रों में पाए जाते हैं। पहाड़ी पर अपने प्रवचन में हमारे दयालु, विनम्र, धार्मिक हृदय में शुद्ध शांति रखने वाले होने को कहते हैं। वे हमें हमारे विश्वासों पर साहस से डटे रहने को कहता है। बेशक हमारा मजाक उड़ाया जाए या अत्याचार किया जाए, वे हमसे हमारी ज्योति को चमकने के लिए कहता है, ताकि दूसरे ने देख सके और स्वर्ग में हमारे पिता की महिमा करने की इच्छा करें। वे हमें विचारों और कामों में नैतिक रूप से शुद्ध होना सिखाता है। वे हमसे कहता है कि पृथ्वी पर धन एकत्रित करने से कहीं अच्छा है स्वर्ग में धन एकत्रित करना है। उसके दुष्टांत शक्ति और अधिकार से सिखाते हैं। अच्छे सामरी के विवरण से वे हमें प्रेम करना और पड़ोसी की सेवा करना सिखाता है। अपने तोड़ों के दृष्टांत में वह हमें सुधार करने और परिपूर्ण होने का प्रयास कराना सिखाता है। खोई भेड़ के दृष्टांत में वे हमें, जो अपने मार्ग से भटक गए और खो गए, उन्हें बचाने का निर्देश देता है। उसके शब्दों को सीखने के द्वारा, उसकी शिक्षाओं का अनुसरण करने के द्वारा और उसके मार्ग पर चलने के द्वारा, जहां हम यीशु को अपने जीवनों के माध्यम में रखने का प्रयास करते हैं, तो उसने हमारे साथ अनंत जीवन बांटने का वादा किया है, जिसके लिए वह मारा गया था। इसे ऊंचा स्थान कोई नहीं है कि हम उसके अनुशासन को स्वीकार करें और उसके शिष्य बन जाएं और अपने पूरे जीवन भर उसके कार्य करें। हमारा कोई अन्य चुनाव हमें वैसा नहीं बना सकता जैसा वह हमें बना सकता है। जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ जिन्होंने सचमुच में उद्धारकर्ता का अनुसरण किया और जो उसके मार्ग पर चला था, मेरे मन में तुरंत गॉस्टफ और मार्गरेट वॉकर के नाम आते हैं। दो मसीह समान व्यक्ति जिन्हें मैं जानता था, वे जर्मनी के पूर्वी कनाडा में आकर बसे प्रवासी थे और मैं उनसे तब मिला जब वे वहाँ मिशन अध्यक्ष था। भाई वॉकर एक नाई के रूप में अपने जीविका चलाते थे। यद्यपि उनकी जरूरतें कम थी, वे अपना सब कुछ बांटते थे। उनके बच्चे नहीं थे, लेकिन वे उन सबों का पोषण करते थे जो उनके घर आते थे। पढ़े लिखे और विशेषज्ञ पुरुष और महिला इन विनम्र अनपढ़ परमेश्वर के सेवकों की तलाश करते थे और अपने आप को भाग्यशाली समझते थे यदि वे कुछ समय इनके साथ बिताते थे। वे साधारण से दिखते थे। उनकी अटक अटक कर बोली गई अंग्रेजी को समझना बहुत बार कठिन होता था। उनका घर साधारण था। उनके पास कार या टेलीविजन नहीं था, नहीं उनके पास ऐसा कुछ था जिसके लिए दुनिया उनकी ओर आकर्षित होती। फिर भी उस आत्मा को महसूस करने के लिए जो उनके घर में रहती थी, विश्वासी लोग उनके दरवाजे पर पहुंचते थे। उनका घर पृथ्वी पर स्वर्ग था और जो आत्मा उनसे चमकती थी वह विशुद्ध शांति और अच्छाई थी। हमारे पास भी वैसी आत्मा हो सकती है और हम उसे संसार के साथ बांट सकते हैं जब हम उद्धारकर्ता के मार्ग पर चलते और उसके परिपूर्ण उदाहरण का पालन करते हैं। हम नीति वचन में यह चेतावनी पढ़ते हैं, अपने पाप धरने के लिए मार्ग को समथर कर। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास उस मार्ग पर चलने के लिए विश्वास, यहाँ तक की इच्छा होगी जिस पर यीशु चला था। इसमें कोई संदेह नहीं, हम उसी मार्ग पर चल रहे हैं जिस पर हमारा पिता चाहता है कि हम चलें। उद्धारकर्ता का उदाहरण जो कुछ हम करते हैं उसकी उपरेखा में बनाता है और उसके शब्द भरोसेमंद मार्गदर्शन करते हैं। उसके मार्ग हमें सुरक्षित घर वापस ले जाएंगे। मैं चाहता हूँ यह हमारी आशीष हो। मैं यीशु मसीह, जिससे मैं प्रेम करता हूँ, जिसकी मैं सेवा करता हूँ और जिसकी मैं गवाही देता हूँ, के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमीन।
Beloved Heavenly Father,
हमारे प्रिय पिता परमेश्वर, हम आपका आशीष सारे संसार के ऊपर चाहते हैं, जो हमने आपकी आत्मा को महसूस किया है, आपके सैक्रिफाइस के लिए, आप हमारी नींव हैं, हम आपके आभारी हैं। हमने जो आज कुछ भी सुना सारे सैक्रमेंट के बारे में, हम प्रार्थना करते हैं प्रेजेंट मानसून के लिए, कि उनके प्यार के लिए हम आपके हाथ को अपने जीवन में महसूस करते हैं। हमने जो महसूस किया है आज, हम कभी वो एहसास नहीं कर सकते हैं। आपके आशीष हम हमेशा अपने ऊपर चाहते हैं, आपके यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
This has been a broadcast of the 184th.
ये अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह के गिरजे का 184वां अर्थ वार्षिक महासम्मेलन था. इसमें गिरजे के जनरल अधिकारी और जनरल पदाधिकारियों से चुने गए वक्ताओं ने संबोधन किया था. संगीत मार्वन मंडप गायक मंडली द्वारा दिया गया था. इसका प्रसारण बोनविल
This broadcast has been furnished as a public service.
इसका प्रसारण बोनवले डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप में किया गया. बिना लिखित अनुमति के इस कार्यक्रम की नकल, रिकॉर्डिंग, प्रतिलिखन या अन्य उपयोग वर्जित है.